वाणी चल रही थी सात आठ पैंसठ की तीसरे पेज के मध्य बात चल रही थी। हम आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती हैं और यहाँ पार्ट बजाने आती है। इस समय तुम बच्चों को सारी नाली है कैसे नंबरवार हर एक धर्म वाले अपने अपने पार्ट अनुसार आते हैं, इसको अविनाशी ड्रामा कहा जाता है। और ये बात किसी की बुद्धि में नहीं है सिवाय तुम्हारे। हम बेहद ड्रामा के एक्टर्स हैं ना, बेहद की इसकी ज्योग्राफी को व अपने जन्मों को जानते हैं। तुम बच्चे समझाए भी सकते हो, बाप तुम बच्चों को कितना रिफ्लेक्ट करते हैं। इसमें भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार है रिफ्लेक्ट करने में, उसको तो बड़ी खुशी रहती है। बाबा हमको सत्य ज्ञान सुनाते हैं और कोई भी दुनिया का मनुष्य सत्य ज्ञान दे नहीं सकता, जानते ही नहीं, इसलिए इसको अज्ञान अंधेरी कहा जाता है। अभी तुम जानते हो हम अज्ञान अंधेरे से कैसे आए हैं, फिर ज्ञान के सोचने में कैसे जाते हैं, ये भी नंबर वार समझा सकते हैं। घोर अंधेरा और घोर सोझरा किसको कहा जाता है, ये अक्षर बेहद से ही लगते हैं। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, दिन होता है तो घोर सोझरा भी होता है, ब्रह्मा की रात होती है तो घोर अंधेरा भी होता है। आधा कल्प सोझरा और आधा कल्प अंधेरा, रात और दिन, सांझ और सवेरा, ये सब बेहद की बातें हैं। हद का सांझ सवेरा नहीं है, बाप तो बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है बेहद की बातें, क्योंकि बाप आकर के बेहद का ज्ञान देते हैं और सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। ऐसे नहीं कि भारत के ही शास्त्रों का सार समझाते हैं, बाइबल और कुरान का भी सार समझाते हैं। आगे चल के जब बड़े बड़े धर्म पिताएं निकलेंगे तो ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर वो अपने ही ग्रंथों की टीका टिप्पणी ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार करने लग पड़ेगी। ये जो भी शास्त्र पढ़ते हैं, दान पुण्य आदि कुछ भी करते रहते हैं, इनमें तो अल्पकाल का सुख मिल गया। आप कहते हैं इनसे मैं नहीं मिलता हूँ, जो मैं इन्हों को विश्व का मालिक बनाऊ, इन बातों से मैं मिलता नहीं। ये भी समझते हो सभी तो विश्व का मालिक नहीं बन सकते, विश्व का मालिक बना तो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार ही पावेंगे। और मालिक तो सिर्फ वो बनेंगे जिनको बाप पढ़ाते, क्या पढ़ने वालों में भी आपस में एक दूसरे से पढ़ाई पढ़ने लग पड़ते हैं, उनको भी मालिकाना नहीं मिलेगा विश्व का। किनको मिलेगा, जो सिर्फ बाप एक बाप से पढ़ाई पढ़ते हैं, जिन्होंने कल पहले पद पाया है वही राजयोग सीखते हैं। सारी दुनिया तो राजयोग नहीं सीखती है, कोटों में कोई पढ़ते हैं कितने करोड़, 500 करोड़ है दुनिया में, और बाप की पढ़ाई पढ़ने वाले कोटों में से कोई और कोई में से भी कोई निकलते। इतना राजयोग सीखते सीखते, इतने वर्ष पढ़ते हुए پھر بھی ایسی پڑھائی کو چھوڑ دیتے ہیں. باپ کہتے ہیں مایا کتنی پربل ہے, بالکل ہی بے سمجھ بنائی دیتی ہے. ایسا باپ جو برسہ برسہ دیتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, ہار کتی دے دیتے ہیں. باپ کہتے ہیں کلپ کلپ ایسا ہوتا ہے جس کے لیے اکثر ہے آشچریوت پچت کچنم گیتا میں پرچلت شلوک ہیں. کوئی کس روپ میں دیکھتا ہے اس کو, کوئی کس روپ میں دیکھتا ہے. باپ کہتے ہیں آشچریوت باپ کا بننتی سننتی اور بھاگنتی ہو جاتی ہے. سمجھتے ہیں برابر ہم سورگ کے مالک بنتے ہیں پھر بھی بھارگتی دے دیتی ہے. باپ جانتے ہیں ان کا دیش نہیں ہے, کیا جو بھارگتی دے دیتے ہیں باپ کو پہچان کر ان کا اپنا کوئی دیش پکا دیش نہیں ہے, کنورٹ ہونے والے ہیں. یہ مایا ہے جو ان کو طوفان میں لاتی رہتی ہے. ایسی سجنیاں جن کو سنگار کر کے سورگ کی مہارانی بناتا ہوں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. کیا سورگ میں کتنی مہارانیاں ہوں گی؟ ارے سورگ میں, سورگ تو سرگ کو کہا جاتا ہے نا, وہاں کتنی مہارانیاں ہوں گی؟ آٹھ مہارانیاں ہوں گی, آٹھ مہاراجا ہوں گی. تو جو آٹھ مہارانیاں بننے والی ہے, مہارانیوں کا پد پانے والی ہے, وہ پرماتما باپ کو پہچانتی تو ہوں گی نا. پہچانتی ہے اور پہچاننے کے بعد بھی پھر چھوڑ دیتی نہیں. ستیوں کے آٹھویں نارائن کے ساتھ جو مہارانی ہوگی وہ دوسرے جنم میں کنورٹ نہیں ہوگی. تو جب کنورٹ ہوگی تو چھوڑے گی نہیں, سچے راستے کو نہیں چھوڑے گی. چھوڑے گی شوٹنگ کہاں ہوگی؟ شوٹنگ تو یہی ہوگی نا. بولا جن کو مہارانی بناتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. باپ پھر بھی کہتے ہیں جس سے سگائی ہوتی ہے انہیں ہی کو یاد کرنا چاہیے. یاد کوئی فٹ سے نہیں ٹھہرے گی, کیا یاد کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے. بھکتی مارگ میں بھی گائے نا ابھیاس ان سبھوں سے ویراگی چگریے تھے, ابھیاس کرنے سے ہی آتما ایکاگر ہوگی. آدھا کلپ نام روپ میں پھنسے ہو تریسٹھ جنم بھانتی بھانتی کے نام اور روپ میں بدھی پھنسی ہے تو پریکٹس تو پھنسنے کی پڑ گئی نا. ابھی اپن کو آسم سمجھ باپ کو یاد کریں یہ بڑا مشکل ہے. تم آتما ابھیمانی بنتے ہو پرنتو وہاں پرماتما کو نہیں جانتے ہو, اور یہاں تم گھڑی گھڑی آتما ابھیمانی بنتے ہو, گھڑی گھڑی دیہ ابھیمانی بن پڑتے ہو, لیکن یہاں تم باپ کو جانتے بھی ہو. پرماتما باپ کو صرف ایک بار ہی جاننا ہوتا ہے. یہاں تم آدھا کلپ دیہ ابھیمانی بن جاتے ہو, یہ بھی نہیں سمجھتے ہو ہم آتماؤں کو یہ شریر چھوڑ کر کے پھر دوسرا پارٹ لے کر کے بجانا ہے. جب دوسرا پارٹ بجانا ہی ہے تو رونے کی تو درکار ہی نہیں, جبکہ باپ دوارا تم سکھ دھام کا ورسا پا رہے ہو تو کتنا خوشی ہونی چاہیے. دس آٹھ پینسٹھ کی وانی کا چوتھا پیج. تو ہم کیوں نہیں ان باتوں پر اٹینشن دے رہے اور اٹینشن دے کر کے اسکالرشپ لے رہے؟ بل بچے کب اپنے سے پرتیجا بھی کرتے کہ ہم باپ کو کب نہیں بھولیں گے, پھر بھی مایا بھلائی دیتی. مایا بڑا زور سے طوفان لگاتی ہے, जितना 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 हम इसके लिए रहना चाहते हैं, परंतु माया होने नहीं देती है। युद्ध का मैदान है ना, एक तरफ है प्रबल माया और दूसरी तरफ है प्रबल बाबा। माया भी उतनी शक्तिवान बनती है जितना बाबा शक्तिवान। तो अभी की युद्ध की बातें शास्त्रों में लिखी हुई है, क्या चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे देवासुर संग्राम हो, शास्त्रों में जितनी भी बाहुबल की युद्ध की बातें लिखी हुई है देवताओं असुरों के बीच में, वो कहाँ की यादगार है? अभी संगम युद्ध की यादगार, नहीं तो वास्तव में देवताएं कोई लड़ाई नहीं लड़ रही। देवताओं को लड़ाई लड़ने की क्या दरकार, वो तो सुख में जीवन जीते हैं। ये आसुरी दुनिया है, इसे इस द्वैतवादी दुनिया में लड़ाई झगड़े होते। देवताएं तो होते हैं अद्वैत, जहां अद्वैत होता है वहां लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं होती है। तो यहां माया बड़ी प्रबल है, अभी की युद्ध की बात है, तो तुम पांच विकारों पर जीत पहनते हो। एक ही पाप को याद करने से पांच विकारों पर जीत पहनने में बल मिलेगा। अगर औरों को याद किया, विविचारी याद की, तो पाप की जो शक्ति है वो अब विविचारी शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि हमको तो इस दुनिया को छोड़ करके वापस परम धाम जाना है। क्या बोला है गीता में, जो मनुष्यों ने गीता लिखी उसमें भी लिखा हुआ है, कहाँ जाना है? न तत् भासते सूर्यो न शतांको न पावक, जहाँ चंद्रमा का सूर्य का अग्नि का प्रकाश नहीं पहुंच सकता वहां जाना। यत्त्वान निवर्तन्ते तथा मा परमं मम, जहां जाकर के मनुष्य आत्माएं इस मृत्यु लोक में वापस नहीं आती, इस दुख की दुनिया में वापस नहीं आती, वह मेरा परम धाम। वहां जाने के बाद ऐसे नहीं कि ये सृष्टि रहती नहीं है, सृष्टि तो रहती है लेकिन आत्मा सुख की सृष्टि में वापस आती है। बाप के घर से कोई भी बच्चा जो भी लौटेगा परम धाम से इस सृष्टि पर आकर के दुख नहीं हो सकता, पहले सुखी जीवन और बाद में धीरे धीरे संग के रंग में आने से दुखी जीवन हो जाता। तो हमको तो परम धाम वापस जाना है, इस सब पुराने शरीर को छोड़ देना, छोड़ देना क्या खुदकशी करनी है? खुदकशी नहीं करनी है, ऐसी आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, ऐसा पक्का अभ्यास करना है। मैं आत्मा चार ज्योति बिंदु स्वरूप प्रकृति के बीच में चमकता हुआ ऐसा सितारा हूँ, देह नहीं हूँ, इस बात का ऐसा पक्का अभ्यास करना है कि शरीर अलग मालूम पड़े और आत्मा अलग दिखाई पड़े। जैसे हम आत्मा ज्योति बिंदु, बिंदु बिंदु आत्माओं की रोशनी इन आंखों से निकलती है, इस आत्मा की यादगार में मस्तक में भ्रकुटी के बीच में टीका लगाते हैं, बिंदु लगाते हैं, लेकिन लगाने वाले ये भूल चुके हैं कि हम एक स्टार आत्मा है। सिर्फ ऐसे दिखावटी टीका या बिंदी लगा रहे हैं। ऋषियों महर्षियों ने जब ये परंपरा बनाई थी तो इसलिए बनाई थी कि एक दूसरे को देख करके आत्म की स्थिति बनी रहे। ये मिट्टी की देह याद ना आए, क्योंकि बुद्धि जिसको याद करती है वैसी ही बुद्धि बन जाती है। चोर डकैतों के साथ रहने वालों की बुद्धि चोर डकैतों जैसी बन जाती। आत्मिक स्थिति में रहने वालों के साथ जो रहेंगे ऐसा संग करेंगे तो उनकी आत्मिक स्थिति बनेगी। हम आत्मा जैसे ज्योति बिंदु है, वैसे बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा से भी ज्योति बिंदु है। वो ज्योति बिंदु जन्म मरण के चक्र से नहीं आ रहा है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, सदा शिव है, सदैव परम धाम का रहने वाला है, ऊंची स्टेज का रहने वाला है। उसके लिए गायन है, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। वो इस पाप की सृष्टि में व्यापक नहीं है, जैसे गीता का वचन है, सद्धाम परम मम, मैं उस परम धाम का रहने वाला हूँ। तो जो परम धाम का रहने वाला स्वयं ही बता रहा है, वो इस दुनिया में व्यापक कैसे हो गया? ये मनुष्यों का ज्ञान है। चारों ओर परमात्मा को ढूंढा, कहीं नहीं मिला तो उसे वो हम कह के बैठे, जहाँ देखो वहाँ परमात्मा ही परमात्मा, कण कण में भगवान। मुसलमान लोग भी कहने लगे चर्रे चर्रे में भगवान है। सभी धर्मावलंबी इस बात को मानने लगे कि परमात्मा सर्वव्यापी है। परमात्मा बाप आकर के कहते हैं बच्चे मैं सर्वव्यापी नहीं। इस सर्वव्यापी के ज्ञान ने तुम्हारी बुद्धि को भटका दिया। कोई मंदिर में भटका, कोई मस्जिद में भटका, कोई गुरुद्वारे में भटका, कोई तीर्थों में भटका। बुद्धि भटक जाने से एकाग्र बुद्धि नहीं हो सकी। अभी मैं आकर बताए रहा हूं, इस पांच तत्वों की दुनिया से परे एक और लोक है, तुरिया लोक, ब्रह्म लोक जिसे कहते हैं, परम धाम जिसे कहते हैं। अंग्रेज लोग उसको कहते हैं सुप्रीम अवॉर्ड, मुसलमान कहते हैं खुदा अर्श में रहने वाला है, फर्श में रहने वाला नहीं, पहले कहते थे, अभी तो वो भी प्रभाव में आ गए। तो ऐसा ऊंचा करता, ऐसा ऊंचा काम करने वाला जो इस सृष्टि पर जब आता है तो सारी सृष्टि को पलट के जाता है, कलयुग को बदल करके सतयुग बना करके जाता है। कलयुग है पाप का युग, पाप के युग को बदल करके सतयुग में देवताओं की पुण्य आत्माओं की दुनिया बनाता है। और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है सतयुग में देवताओं का राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, लक्ष्मी नारायण के राज्य में सब सुखी थे। नारायण को सोलह कला संपूर्ण कहा जाता है, सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो ऐसी दुनिया बनाने के लिए मैं आता हूँ, जाते भी हैं इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले जाते। तो इस पुराने पाप की दुनिया में इस पुराने पाप के शरीर को छोड़ देना, बुद्धियों से छोड़ने की बात है, खुदकशी करके छोड़ने की बात नहीं है। ऐसा अभ्यास करना है आत्म की स्थिति का। पाप को भूल जाने से फिर योग बन नहीं रहता है, क्योंकि सिखाने वाला जो पाप है उसी को भूल जाएंगे तो फिर योग बल कैसे है? माया को चांस मिल जाता है, थप्पड़ लगाई देती है देहवान पर, आत्मा देहवान में आ जाती है। देहवान में आने से पांच विकार पैदा होते हैं। अगर हम अपन को आत्मा समझे, दूसरे को भी आत्मा समझे, तो स्त्री पुरुष की दृष्टि गायब हो जाती है। स्त्री पुरुष की दृष्टि ही नहीं रहेगी तो काम विकार भी नहीं होगा, कामेश क्रोधेश भी नहीं होगा, कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध में आते हैं। तो आत्म की स्थिति पांच विकारों से दूर रखने वाली, और मैं देह हूं ये देहभान की स्थिति, दूसरों को देह के रूप में देखने की स्थिति, ये पांच विकारों को पैदा करती है। सबसे बड़ा है काम का थप्पड़। पांच विकारों का जब नाम गिनाते हैं सबसे पहला कौन सा आता है? नाम गिनाते हैं तो कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो सबसे जो मुखिया है पांच विकारों का वो है काम विकार। पाप कहते हैं बच्चे नंबर वन ये भूल है, इसे काम विकार को ही भ्रष्टाचार कहा जाता है। भ्रष्टाचार और शिष्टाचार, देवताएं होते हैं शिष्टाचारी और राक्षस होते हैं भ्रष्टाचारी। खास सारी दुनिया राक्षसों की हो गई, भगवान ने ये राक्षसी दुनिया नहीं बनाई थी, भगवान ने तो आकर के शिष्टाचारी दुनिया बनाई थी। शिष्टाचार सिखाया था, शेष इंद्रियों से आचरण करने को कहा जाता है शिष्टाचार, और भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने को कहा जाता है भ्रष्टाचार। भ्रष्ट इंद्रियों का जो पाप प्यार है, जो भूत की पैदाइश है, उससे दुनिया का पतन होता है। उस दुनिया की शुरुआत ही तब से होती है जब से दुनिया में दूसरे दूसरे धर्मों का आगमन होता है। आज से 2500 साल पहले इब्राहिम आए, उन्होंने इस्लाम धर्म चलाया। बाद में 250 वर्ष के बाद महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने बौद्ध धर्म चलाया। द्वैतवाद में से द्वैतवाद फैलता चला गया। पहले एक ही धर्म था आदि सनातन देवी देवता धर्म, उस आदि सनातन देवी देवता धर्म की एक पाप ने आकर के स्थापना की थी, इसलिए एक वाद था, अद्वैत था, द्वैत था ही नहीं। अद्वैत से ही देवताओं की रचना होती है और द्वैतवाद से अनेक धर्मों के आने से राक्षसी धर्मों की स्थापना हो जाती है। भगवान आकर के देवता बनाता है। गीता में जो ज्ञान है अर्जुन को ऐसा ज्ञान दिया जो नर से नारायण बना, नारी द्रौपदी को ऐसा ज्ञान दिया जो नारी से नारायणी बनी। ये शिक्षा आकर के बाप ही देते, परंतु गलती से उस गीता में साकार देवता का नाम डाल दिया। किसका नाम डाल दिया? कृष्ण का नाम डाल दिया। गीता में तो कई एक श्लोक है जो ये बताते हैं कि गीता का उपदेश देने वाला निराकार है, साकार नहीं है। वो निराकार शिव ही शक्ति पर आकर के गीता का ज्ञान देता है। वो जन्म मरण के चक्कर से जरूर नहीं आ रहा है, लेकिन गीता में शब्द आया है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। तो जब मैं प्रवेश करने योग्य हूं, जैसे भूत प्रेत भी प्रवेश कर सकते हैं, तो क्या मैं प्रवेश नहीं कर सकता? वो शक्ति पर आकर के इस शक्ति के रंगमंच के जो हीरो हीरोइन पार्टधारी है राम और कृष्ण, उन आत्माओं में आकर प्रवेश करता है। जब प्रवेश करता है तो उनका सतयुग का और त्रेता का नाम बदल जाता है। वही आत्माएं जन्म लेते लेते 84 के चक्र में आते, अंतिम जन्म में आकर के साधारण मनुष्य तन बनता है। उस साधारण मनुष्य तन में आकर के परमात्मा नाम उनका नामकरण करता है ब्रह्मा और शंकर। ये दो आत्माएं ब्रह्मा, ब्रह्म माने बड़ी और माँ माने माँ, दुनिया की बड़े से बड़ी माँ। बड़ा काम करेगा तो बड़ी माँ हो, और माताओं ने इतना प्यार नहीं दिया हो जितना ब्रह्मा ने शक्ति को कार्य कर दिया होगा, तो काम के आधार पर नाम पड़े शास्त्रों में। शास्त्रों के कोई भी नाम उठा के देख लो, जैसा काम वैसा। दुर्योधन, दुशासन, अर्जुन, युधिष्ठिर, सारे नाम तो अर्थ है ना। तो वो इस समय पाठ चल रहा है, परमात्मा बाप आकर के एक एक बात की हिंची हिंची करके समझा रहा है, बता रहा है कि बच्चे अब ये पाप की दुनिया खलास होने वाली। पाप की दुनिया खलास होगी तो पाप और पुण्य से परे की दुनिया में तुम्हें जाना है। पहले वो है ब्रह्मलोक मेरा धाम, जहाँ ना पाप होता है ना पुण्य होता है, वहाँ तुम आत्मा बिंदु बिंदु रूप स्टेज में रहती हो। बिंदु बिंदु रूप स्टेज से जब इस शक्ति पर वापस आती हो तब तुम्हें शरीर मिलता है। तो जो नई शक्ति चलती है उस नई शक्ति का मैं आकर के ज्ञान दे रहा हूँ। कैसे नई शक्ति शुरू होगी और कैसे इतनी बड़ी 500-700 करोड़ मनुष्यों की शक्ति तलाश होनी है वो आकर के मैं अभी बताता हूँ। एक तरफ विनाश का ज्ञान देता हूँ और दूसरी तरफ स्थापना का ज्ञान देता हूँ। आज से 65-70 साल पहले एटमिक एनर्जी का नाम निशान नहीं था, सिर्फ शास्त्रों में गाते आते हैं हर हर बम 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 बम। शब्द को शंकर जी के साथ जोड़ते हैं क्योंकि शंकर का काम है पुरानी शक्ति का विनाश करना। तो पुरानी शक्ति का विनाश करने वाला जब इस शक्ति पर आ जाता है तो नई शक्ति की स्थापना करने वाला भी जरूर आता होगा, वो है परमपिता परमात्मा शिव। लेकिन गलती से लोगों ने समझ लिया शिव शंकर एक है। अरे शिव को शिवलिंग के रूप में दिखाया जाता है, पुराने जितने भी मंदिर हैं उनमें बाजू में देवताओं को जो दिखाया जाता है शिवलिंग के चारों ओर, उनमें एक मुख्य स्थान पर शंकर जी को दिखाया जाता है। वहीं सामने शिवलिंग रखा हुआ है मंदिर के बीच में और वहीं चारों तरफ शंकर की मूर्ति और दूसरे देवताओं की मूर्ति रखी हुई है, तो इससे क्या पहचाना नहीं जा सकता उन देवताओं के बीच में बड़ा देवता महान देव महादेवता कौन है? महादेव है शंकर, बाकी सब नंबरवार है। तो देवता को और भगवान को मिला के ये कर दिया है उसका भी कारण है। शिव को ब्रह्मा के साथ मिला के क्यों नहीं कर दिया? विष्णु के साथ मिला के क्यों नहीं कर दिया? शिव को शंकर के साथ क्यों मिलाया? कुछ तो कारण होगा। कारण यही है कि शंकर को जो याद की अवस्था में बैठाया दिखाया जाता है वो याद में इतना तल्लीन होता है शिव ज्योति बिंदु की याद में, जिस शिव ज्योति बिंदु का बड़ा आकार शिवलिंग दिखाते हैं कि इतनी एकाग्रता इतना लवलीन और कोई देवात्मा नहीं हो सकती। इसलिए शिव और शंकर को एक कर दिया है। बाकी ऐसा नहीं है कि शिव की आत्मा और शंकर की आत्मा एक है, शिव अलग है शंकर अलग है। शंकर को याद में बैठे हुए दिखाया गया, चित्रों में देखो मूर्तियों में देखो तो उससे क्या साबित होता है? अगर शंकर भगवान है तो उसे भी किसी की याद करने की दरकार है? उसको भी ध्यान में बैठने की दरकार है क्या? नहीं, तो स्वयं ध्यान स्वरूप है, ज्योतिबिंदु स्वरूप है, वो तो सदाशिव है, उसको कोई पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं है। किसको? सुप्रीम सोल शिव को। वो जिसमें प्रवेश करता है उसका नाम संसार में शंकर विश्वनाथ प्रसिद्ध होता है, उसको विश्व की बादशाही मिलती है। किसी को विश्व की बादशाही मिलती नहीं बाहुबल से, एक शंकर को ही दिखाया गया है चित्रों में कि योग बल से विश्व की बादशाही प्राप्त की। तो वो शंकर ने भ्रष्टाचार को दूर किया होगा, व्रत इंद्रियों का जो आचरण आज दुनिया में फैला हुआ है वो भ्रष्टाचार की संतति को हलाक किया होगा। इसलिए गायन है शंकर ने क्या भस्म किया, कामदेव को भस्म किया, और किसी देवता के लिए इस बात का गायन नहीं है। क्या कि कामदेव को भस्म किया हो, कामदेव जो मुखिया है वो का विकार, उस मुखिया विकार को ही भस्म कर दिया जाएगा तो दूसरे विकार तो अपने आप बाहर खड़े होंगे। तो असली जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को अंत करने वाला आज तक कोई दुनिया में हुआ ही नहीं। बड़े से बड़े धर्म पिताएं आए इस धरती पर, इब्राहिम आए, बुद्ध आए, क्राइस्ट आए, गुरु नानक आए, विवेकानंद आए, लेकिन भ्रष्टाचार और बढ़ता ही गया। तो उनके आने से फायदा क्या हुआ? दुनिया नीचे गिरती गई तो आने से फायदा हुआ या नुकसान हुआ? जरूर ज्ञान उनका कुछ अधूरा है। वास्तव में जो संपूर्ण शिव इस सृष्टि पर आता है तो ऐसा संपूर्ण ज्ञान देता है कि इस दुनिया से भ्रष्टाचार का नाम निशान अंत हो जाता है। जो भी सृष्टि इस सृष्टि पर रहती है, चाहे वो जानवर हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, सब श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करने वाले होते हैं। जैसे मोर हमारे भारतवर्ष का आज भी राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। क्यों माना जाता है? दूसरे पक्षी को क्यों नहीं? उदाहरण देते, राष्ट्रीय पक्षी को दूसरे पक्षी को मान लेते, क्योंकि सभी पक्षी मैथुन से शक्ति पैदा कर रहे थे। एक मोर ही ऐसा है जो मोरनी, मोर के नाचते समय उसका आंसू पीती है और उससे गर्व रह जाता। माने मिसाल के लिए आज भी दुनिया में एक ऐसी पक्षी की बात कायम है और वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है, जिससे ये साबित होता है कि इस दुनिया में शिष्टाचारी संतान भी कभी हुई थी। ये कोई असंभव बात नहीं है कि शेष इंद्रियों से जो ज्ञानेन्द्रियां हैं उनसे श्रेष्ठ दुनिया कैसे पैदा होगी, श्रेष्ठ सृष्टि कैसे बनेगी। अभी बाप ये बातें बताए रहे, ये कॉन्सेंट्रेशन की बात है। आज मनुष्य की बुद्धि कौड़ी तुल्य हो गई है, क्योंकि कौड़ी में ही बुद्धि लगी रहती है। काम विकार प्रधान होने की वजह से और स्त्रियों में अपनी देह का ज्यादा होना होने की वजह से कौड़ी की याद मुख्य हो गई, कौड़ी का सेब ही याद आता रहता है। तो जहां कॉन्सेंट्रेशन होगा वही शक्ति की, वो वही बुद्धि की सारी पावर, शरीर की सारी पावर निचुड़ के इकट्ठी हो जाएगी। तो काम इंद्रियों में सारी शक्ति इकट्ठी हो जाती है। वस्त्र इंद्रियों में जब सारी शरीर की और बुद्धि की शक्ति इकट्ठी हो जाती है तो मनुष्य का पतन होगा या उत्थान होगा? पतन होगा। वो प्यार भ्रष्टाचारी प्यार, भ्रष्टाचारी प्यार से जो संतति पैदा होती है वो भ्रष्ट आचरण करने वाली होती है। जो भी बच्चे आज पैदा हो रहे हैं वो मोस्टली दुखदायी पैदा हो रहे हैं। माँ बाप को ही दुख देने लग पड़ते हैं, नहीं तो रचना हर रचयिता के सुख के लिए पैदा की जाती है, उल्टा हो जाता। अभी बाप आए हैं उल्टों को सुल्टा बनाने के लिए, भ्रष्टाचारियों को शिष्टाचारी बनाने के लिए। भ्रष्टाचारी का टाइटल क्रोध से नहीं होता है। क्या कहा है? कोई क्रोधी हो तो क्रोधी को भ्रष्टाचारी का टाइटल दिया जाए, ये रंग बात। पतित बनने से ही ये टाइटल मिलता है और पतित होते हैं काम विकास। क्या किसी को क्रोध आता है तो वो क्रोध कौन सी विशेष इंद्रियां हैं जिनसे झलकता है क्रोध? आंख शिष्टाचारी है या भ्रष्टाचारी है? आंख तो ज्ञान इंद्रिय है ना, तो ज्ञान इंद्रियों में सारी ताकत जाके इकट्ठी होती है। तो शक्ति का ऊर्ध्वगमन हो रहा है या नीचे जाती है शक्ति क्रोध के समय? ऊर्ध्वगमन तो होता है, लेकिन वो ऊर्ध्वगमन जो है वो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए होता है, दूसरों को परास्त करने के लिए होता है, इसलिए उसमें पावर नहीं रहती। अभी बाप आए हैं, बच्चे ये काम और क्रोध तुम्हारे महाशत्रु, इनकी असलियत को जानो। क्रोध भी उतना ही नीचे गिराने वाला है जितना काम विकार नीचे गिराता है। काम विकार मनुष्य जब भोगता है तो स्त्री पुरुष ऐसे समझते हैं बड़ा प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से, प्यार नहीं कर रहे हैं और ये एक दूसरे को मार मार रहे हैं, गड्ढे में गिरा रहे हैं। वो बात किसी की बुद्धि में नहीं आती, बात ही आकर के ये बात सिखाते हैं कि बच्चे अब तुम शिष्टाचारी हो। तो बताया क्रोध से पतित नहीं बनते हैं, काम विकार से ही पतित बनते हैं, इसलिए रणिया मारते रहते हैं हे पतित पावनाओ। क्या हे पतितों को पावन बनाने वाले बाप, इस शक्ति पर आओ तो पावन जरूर बनना पड़े। किसको बुलाते हैं पतित पावन आओ कह करके? किसको बुलाते हैं? कृष्ण को बुलाते हैं, कृष्ण बच्चे को बुलाते हैं नहीं? किसको बुलाते हैं? पतित पावन का टाइटल किसके साथ जुड़ा हुआ है? शिव के साथ जुड़ा हुआ है, विष्णु के साथ जुड़ा हुआ है नहीं? किसके साथ जुड़ा हुआ है पतित पावन? सीता। तो पतित पावन जो सीताराम का टाइटल है उनको जो बुलाते हैं वही पतित से पावन बनते हैं। जो पतित पावन कहकर के बुलाते नहीं वो पतित से पावन बनते भी नहीं। रणिया मारते रहते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर पावन बनना पड़े, क्योंकि जन्म जन्मांतर तुमने ही बुलाया है। पतित पावन बाप को, राम बाप को बुलाया है तो तुमको पावन बनना पड़े और बाप को आकर बना। बार बार बोलते हैं पतित पावन आओ, पतित पावन आओ, पतित पावन मना रणिया मारते। मुख्य बात ही है पवित्रता की। इस ज्ञान में मुख्य धारणा कौन सी सिखाई जाती है? जितनी भी धारणाएं सिखाई जाती है उनमें मुख्य धारणा कौन सी है? पवित्रता की। फर्स्ट प्योरिटी आ जाए तो पीस और प्रॉस्पर्टी जीवन में आप ही फॉलो करेगी। बाप आकर के कोई नई बातें नहीं सुनाते हैं, क्या है वही सारी शास्त्रों की बातें। उसी दाद ने पहले ही बोल दिया है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति। जहाँ सुंदर मति होती है वहाँ पीस एंड प्रॉस्पर्टी अपने आप आती है। सुंदर मति होती है तो पवित्रता होती है, आंखों में भी पवित्रता होती है, कर्मेंद्रियों में भी पवित्रता होती है। प्योरिटी नहीं होगी तो पीस और प्रॉस्पर्टी फॉलो ही नहीं करेगी। अभी ब्राह्मणों के जीवन में भी देख लो, क्या कोई कहे कि हम 40 साल से 50 साल से ब्राह्मण हैं, 50 साल से ब्राह्मण हैं और पीस और प्रॉस्पर्टी जीवन में दिखाई नहीं पड़ती तो क्या कहेंगे? सुख और शांति प्रॉस्पेरिटी दिखाई नहीं पड़ती है तो क्या कहेंगे, प्योर है या इम्प्योर है? ज्ञान को धारण किया है अथवा नहीं धारण किया है? जरूर धारणा देती है। प्योर की होती है बाप के साथ योग लगाना, क्या? और दूसरों के साथ योग लगाने से प्योरिटी नहीं आएगी। एक बाप के साथ बुद्ध योग लगाएंगे तो प्योरिटी जरूर आएगी, तुम काम को जीत लेंगे तो और सारे ही विकार तुम्हारी शरण में आ जाएंगे, क्या? एक काम को जीता तो काम को एक को तो एक ही पहले जीतेगा, जिसका शास्त्रों में गायन है। किसका गायन है? शंकर का गायन है ना, कामदेव को भस्म किया, फिर उसके नंबर बार बच्चे भी होंगे। जो नंबर बार बच्चे हैं वो माला के रूप में दिखाई जाते, माला गले में भी दिखाई जाती है, माला भुजाओं में भी दिखाई जाती है, माला सर के ऊपर भी दिखाई जाती है। जो ज्यादा प्यारा बच्चा होता है तो बाप उसको प्यार से कहाँ चढ़ा के रखता है? सिर पर चढ़ा के रखते हैं ना, सिर पर चढ़ा के रखा हुआ है तो ज्यादा प्यारा होगा ना। तो कितने बच्चे ऐसे प्यारे निकलते हैं जो पहले काम विकार को जीतते हैं और पांचों ही विकारों को जीतते हैं, आखिरी। तो ये समझने की बातें हैं, ये कोई दंत कथाएं नहीं है, क्या? कि शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, कोई देवता को भस्म नहीं कर दिया, अपने अंदर की ही जो कमजोरी थी उस कमजोरी को भस्म कर दिया। वो तो भक्ति मार्ग में बहुत सुनी है, किताबें पढ़ी है, दंत कथाओं वाली। अभी ये ज्ञान की बातें तुम सिर्फ एक जन्म में सुनते हो, क्या? वो कथाएं तो पढ़ते आए शास्त्रों में, सुनते आए और सुनाते आए, बुद्धि में कुछ भी बैठा नहीं। अभी बाप आकर के उनका अर्थ समझाते, अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठते हैं। इसलिए इस जन्म को सफल करने के लिए बाप आते हैं। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ है, लेकिन अर्थ को नहीं समझते। अरे मनुष्यों में तो मनुष्य बनकर के जन्म लिए 63 जन्म से, द्वापर युग से ही मनुष्य जन्म होता चला आया, उससे पहले तो देवताओं के जन्म होते थे। तो मनुष्य जन्म दुर्लभ हुआ, ये सिर्फ कहने की बात कह दी, अर्थ तो नहीं समझे। मनुष्य का अर्थ भी तो होगा, मनु की औलाद मनुष्य, जैसे विष्णु के फॉलोअर वैष्णव, शिव के फॉलोअर शैव, एक मात्रा बढ़ जाती है बच्चे के अर्थ में, फॉलोअर के अर्थ में। ब्रह्मा के फॉलोअर ब्राह्मण, तो ऐसे ही अर्थ लगता है। मनु कहा जाता है जो मन का पार्ट बजाता है, परमात्मा से सुप्रीम सोल आते हैं तो उनकी तीनों शक्तियां साथ साथ आती है। कौन सी तीन शक्तियां हैं हर आत्मा की? मन बुद्धि संस्कार। तो सुप्रीम सोल की भी तीन शक्तियां हैं, मन रूपी ब्रह्मा, बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र शंकर और परिवर्तन शक्ति विष्णु। ये तीन शक्तियों के साथ परमात्मा से भी शक्ति पर आता है। पहले इस संसार में किस शक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष होता है? मन के द्वारा, मनु। सारी शक्ति मनु की औलाद हो जाती है। तो क्या द्वापर युग से जितने भी जन्म मनुष्यों ने लिए हैं उन जन्मों में कहेंगे कि मनु की औलाद है? उसको मनु की औलाद नहीं कहेंगे, वहां मनु होता ही नहीं। मनु कब होता है? संगम युग में होता है। 63 जन्मों में से जो लास्ट जन्म होता है, उस लास्ट जन्म में परमात्मा बाप आकर के मनु के द्वारा सृष्टि आरंभ करते मनुष्यों की। वो मनुष्य जन्म दुर्लभ है। तो शास्त्र में तो अगड़म पगड़म अर्थ लिख दिए, शब्दों के सही अर्थों को ही नहीं पकड़ा है। बाप आकर के एक एक बात के हिज्जे करके बताते हैं, इस जन्म को सफल बनाने के लिए मैं आया हुआ हूँ। दिन प्रतिदिन विनाश का समय नजदीक आता जाता है। क्या इतना नजदीक आता जाता है?
बहुत
नजदीक। पहले बोलते थे 75 में विनाश होगा, है कितना नजदीक बता दिया, 76 में तो हुआ ही नहीं है। हुआ नहीं हुआ? है? अरे कोई चीज की शुरुआत होती है तो वो शुरुआत सबकी नजरों में नहीं आती। दुनिया की हर चीज की शुरुआत सूक्ष्म में होती है। तो ऐसे नहीं कहेंगे 77 में विनाश शुरू नहीं हुआ। बाहर की दुनिया की तो बाबा ने बात ही नहीं की थी। पहले ब्राह्मणों की दुनिया में कल्याणकारी विनाश जरूरी है कि बाहर की दुनिया में जरूरी है? विनाश कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? कल्याणकारी है। तो विनाश जो कल्याणकारी है उसकी शुरुआत ब्राह्मणों की दुनिया से 76 में बाबा ने घोषणा कर दी। तो क्या बाबा ने झूठ बोल दिया? झूठ तो नहीं बोला। समझने वालों की समझ की कमी हो सकती है। बाबा ने तो स्पष्ट बोल दिया 77 से पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। अब जो करे सो पावे। क्या करे? आप हुए तो मर गई दुनिया। इस बाहर की दुनिया से अपने को जिसने मार दिया उसके लिए दुनिया मर गई। इस दुनिया से पुरानी दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। जो कुछ भी लेना देना है जो बाप आकर के नया संगठन बनाए रहे हैं उस नए संगठन से ही प्राप्ति होनी है। वो नए संगठन रूपी दुनिया ही नई दुनिया लाएगा। तो 77 से कोई आत्मा तो होगी जिसके लिए विनाश शुरू हुआ। कौन सी आत्मा है? लक्ष्मी नारायण, जिनके लिए बोला है मुरली में। क्या बोला? इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? 8 से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। तो 65-66 की इस मुरली में से जब हम अर्थ निकालेंगे तो 65-66 से 5000 वर्ष के पुराने जो कल्प की तरफ हम उल्टे चले तो कहाँ पहुंचेंगे? कहाँ जाकर के हो जाएगा? 76 में 5000 वर्ष पूरा हो जाएगा। 76 में होगा कि 65 में होगा? 65 में होगा। 65 में जलाई गई वाणी 8 से 5000 वर्ष पूर्व। तो 5000 वर्ष पूर्व कहाँ हुआ? 65 में हुआ ना। फिर उसमें बोल दिया 10 वर्ष कम। आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। तो 10 वर्ष कम 5000 वर्ष उस वाणी के अनुसार कब हुए? 76 में हुए। जब इन लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ तो स्थूल बुद्धियों ने समझ लिया कोई स्थूल जन्म हुआ होगा। अरे बाप सब कुछ बेहद की बातें करते हैं। जैसे बच्चा पेट में से बाहर आता है तो गुप्त से प्रत्यक्ष हुआ ना, उस प्रत्यक्ष होने को ही तो जन्म कहा जाता है। तो ऐसे ही ब्राह्मणों की संगमिक दुनिया में लक्ष्मी नारायण की आत्माएं जब से प्रत्यक्ष हुई, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया तो उनका जैसे जन्म हुआ। तो कोई तो ब्राह्मण होंगे 76 में जिन्होंने इस बात की गहराई को समझा होगा कि कौन सी आत्मा है आने वाली नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण बनने वाली है, होंगी या नहीं होंगी, जरूर समझने वाली ऐसी होंगी और उसके प्रूफ भी मिलने चाहिए। दिल्ली में कल्पांत नामक अखबार छपता था उस समय श्रीनगर से, उसमें 10-11 नगाड़े छापे गए, इन सब बातों का डिटेल दिया गया। उन नगाड़ों की अभी संकलित करके एक पुस्तक बन गई संजीवनी। संजीव ने सारी बातें दी हुई। तो सन 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म बेहद के रूप से हो गया। ये बेहद का ज्ञान है, दिव्य जन्म होता है यहाँ, यहाँ हद के जन्म की बात नहीं है। जैसे लक्ष्मी नारायण को अपने स्वरूप का पता लग जाता है कि हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, हमारी आत्मा का पार्ट नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का है, ऐसे ही हर आत्मा को, ईश्वरीय ज्ञान लेने वाले हर ब्राह्मण बच्चे को अपने पार्ट का पता चलना चाहिए। हु एम आई, नई दुनिया में पार्ट बनाने वाला मैं कौन सी देवात्मा हूं, नंबर बारी प्रत्यक्ष होंगी। तो जरूर जो देव पद पाने वाले अष्ट देव होंगे वो पहले प्रत्यक्ष होंगे। त्रिमूर्ति तो प्रत्यक्ष होती ही है पहले, लेकिन वो सूर्यवंशी देवताएं पहले प्रत्यक्ष होते। तो बताया अभी दिन प्रतिदिन विनाश का समय नजदीक आता जाता है। यहाँ कौन से विनाश की बात की, आरंभिक विनाश की बात की या अंत के विनाश की बात की है, है? अंत के विनाश की बात की है। जो फाइनल विनाश होगा वो दिन प्रतिदिन नजदीक आता जा रहा है। हालांकि ये वाणी तो ब्रह्मा बाबा जब जीवित थे उसी समय की बात है, क्या 65 से 68 तक की कोई वाणी होगी जहाँ से ये रिवाइज कोर्स की मुरली उठाई गई है, तो उससे साबित होता है कि बाबा ने तो बता दिया दिन प्रतिदिन विनाश का समय नजदीक आता जाता है और बाबा ने वो घोषणा भी कर दी। मिशन 76 से पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाती। जब विनाश का समय नजदीक आता है फिर पढ़ाई खलास हो जाती है। 76 में क्या पढ़ाई खलास हो गई है? अरे बेसिक की जो पढ़ाई उस समय पढ़ रहे थे ब्रह्मा बाबा और ब्राह्मण बच्चे, वो पढ़ाई पूरी हो गई। जिनको क्लास ट्रांसफर करना था क्लास को ट्रांसफर करना शुरू हो गया, अभी भी क्लास ट्रांसफर हो रहे। बेसिक की पढ़ाई उनकी खलास हो गई और अब आगे की एडवांस की पढ़ाई उनको पूरी करनी। जैसे जनक पिछाड़ी में आया, क्या जब पढ़ाई बेसिक की खलास होना शुरू हुई उस समय जनक आया या लास्ट में आया? जनक कब आया, पिछाड़ी में आया ना। जब जनक पिछाड़ी में आया तो पिछाड़ी में आकर के उसने जरूर संपूर्ण सरेंडर कर दिया होगा, बल संपूर्ण सरेंडर किया, लेकिन लास्ट में उतनी प्रैक्टिस न होने के कारण योग में रहने का समय नहीं मिलता। इतना जितना ऊंच पद पाना चाहिए उतना ऊंच पद नहीं पाया। जनक किसका नाम है शास्त्रों में, सीता जी के पिताजी का नाम जनक है। सीता कौन है, अरे राम होगा तो सीता भी कोई होगी ना, है सीता और गीता। तो बोला सच्ची निर्भरता अब राजी होता है, माना जो एक बार बाप को पहचान ले फिर बीच में छोड़े नहीं, लगातार लगा रहे, तो वो है सच्ची दिल। और इधर उधर दिल भटक गई तो वही झूठी दिल। तो सच्चे दिल पर साहब राजी होता है। और सब शास्त्रों में दंत कथाएं हैं, ढेर की ढेर कथाएं सुनते रहते हैं। ये तो बीज को और झाड़ को जानता है, कितने समय से समझाते आते हैं, कितने समय से योग में रहते हैं, फिर भी कर्म भोग तो होता ही है। क्या कहा, इतने लंबे समय से पुरुषार्थ कर रहे हैं फिर भी कर्म भोग क्यों पकड़ रहा है? क्योंकि 63 जन्म का जो किए हुए विकर्म है, पाप कर्म है, वो अभी पूरे पूरे नहीं हुए। कर्मातीत अवस्था इसलिए अंत में आ गई। अंत कब होगा है? जब स्थूल विनाश शुरू होगा तो समझो अंत है। और विनाश कब होगा? जब पूरी स्थापना हो जाएगी। कर्मातीत अवस्था अंत में आवेगी। अभी तुम कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। क्या कर रहे हो? कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। ऐसा पुरुषार्थ, कर्मेंद्रियों से कर्म करते रहो लेकिन कर्म करते हुए भी बुद्धि उपराम बनी रहे, कर्म इंद्रियों से अतीत बनी रहे, कर्म इंद्रियों के लेप छेप में बुद्धि न फंसे। ऐसा तुम कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी हम जाते हैं तो हमारे सभी दुख दूर हो जाने, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा अलग हो जाती है। क्या कहा, तो छोड़ दो शरीर है? शरीर छोड़ने के बाद आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर छोड़ देना चाहिए ना। ब्रह्मा बाबा ने भी शरीर छोड़ दिया, नहीं छोड़ना चाहिए है? हाँ, शरीर छोड़ने की बात नहीं है, शरीर छोड़ना माना देह भान छोड़ना। ऐसी पक्की प्रैक्टिस हो जाए कि जैसे देह भान हमको पकड़े नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमारे ऊपर असर ही न करे, वो तब होगा जब पिछले 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा और तब ही रिजल्ट निकलेगी। पहले से रिजल्ट नहीं निकल सकती। देरी से आने वालों को और ही जाती उमंग आता है। क्या कहा, जो जितना देरी से आते हैं ज्ञान में उनको ज्यादा उमंग क्यों आता है? कारण क्या है, है? उनको ज्यादा गर्मी क्यों चढ़ जाती है? अरे सूरज सवेरे को निकलता है तो किरणें कैसी होती है? ठंडी ठंडी होती है। और दोपहर को सूरज की किरण तीखी हो जाती है तो गर्मी चढ़ेगी ना। तो यही बात है, ज्ञान सूर्य जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाता है वैसे वैसे नई आत्माओं को रोशनी और ताकत ज्यादा मिलती जाती है। रिफाइन किया हुआ ज्ञान मिलता है इसलिए उनका जोश बढ़ता चला जाता है। नारायणी नशा सिंधु नाराज चौगुना बढ़ता है। तो देरी से आने वालों को और ही जाती उमंग आता है। लास्ट शो फास्ट हो सकते हैं और पुराने थक जाते हैं। क्यों पुराने क्यों थक जाते हैं? ठीक से ज्ञान नहीं उठाया हुआ है तो पुरानों में थकान आ जाए। न देरी से आने वाले पुरुषार्थ में लग जाते हैं। जो नए नए आते हैं वो देरी से आए हैं फिर भी पुरुषार्थ में लग जाते हैं। کہتے ہیں پیچھے آنے والے بھی آگے جا سکتے. کمپلسن نہیں بتایا کیا کہ جتنے پیچھے آئیں گے سب آگے چلے جائیں گے؟ نہیں. ایڈوانس میں جو بھی پیچھے آتے ہیں ان میں یہ سمبھاونا زیادہ ہوتی ہے کہ چاہے تو وہ آگے جا سکتے. سارا مدار جو اوپر ہے زیادہ, یہ نہیں کہا کہ بھاگ دوڑ پر مت آ رہے, میلے ملاخڑے لگانے پر مت آ رہے یا بھاشن بازی کرنے پر مت آ رہے. کیا بتایا؟ سارا بدھیوگ کی ایکاگرتا کے اوپر مت آ رہے ہیں. یاد گھڑی گھڑی بھول جاتی ہے, اس لیے مایا تھپڑ لگا دیتی ہے. اگر یاد کی استھتی ایکاگر بنی رہے تو مایا بیچ میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی. پرشارتھ کر کے پیارے باپ کو یاد کرتے رہو. تم جانتے ہو پڑھائی سے ہی ہم اونچ پد پا رہے ہیں. کیا یوگ میں لگ جانے کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہم یوگ میں لگ گئے تو ہم نے باپ کو پورا پورا پہچان لیا. کیا میں جو ہوں اور جیسا ہوں ویسا کوئی کوٹوں میں کوئی کوئی ہے جو میرے کو بدلا پہچانتے ہیں, اور جتنا پہچانتے ہیں اتنا ہی پراپتی کرتے. پڑھائی اونچی پڑھے گا تو اونچ پد پاوے گا. لوکل دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے. تو بولا بچوں کو اچھا پرشارتھ کرنا چاہیے, بدھی میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ ہم پیچھے آئے ہیں. تمہاری بدھی میں بے حد کا باپ ہم کو پڑھائے رہا ہے, یہ بیٹھا ہوا ہے اور ان کے دوارا پڑھائے رہا ہے. کیا کہا؟ اس دوارا پڑھائے رہا ہے یا ان کے دوارا پڑھائے رہا ہے؟ ان کے دوارا. مانا کوئی دو ہے کم سے کم جن کے دوارا پڑھاتا ہے, ماں کے دوارا پڑھاتا ہے اور باپ کے دوارا پڑھاتا ہے. یہ دو آ کر کے اکٹھے ہوئے ہیں. کیا کہا؟ جب دونوں آ کر کے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وشنو بن جاتا ہے. باپ اور ماتا, راون ان کو بچھڑائے دیتا ہے. اب دونوں مل کر کے جب ایک ہو جاتے ہیں تو وشنو کا راج شروع ہو جاتا ہے.
کلاس کرو, کلاس مانا سنگھن, سنگھن میں بیٹھو گے تو طاقت زیادہ ملے گی, دگنی طاقت مل جائے گی. اگر اکیلے بیٹھو گے تو اتنی طاقت نہیں ملے گی. چلو سنگھن میں بیٹھ کر کے سنسار تو ملانے پڑتے ہیں, سنسار تو آپس میں ٹکراتے ہیں, ہے نا؟ کیونکہ بیٹے جس کی بڑی ہوئی زندگی ہے تو بٹائی زندگی ہونے کی وجہ سے سب آپس میں ٹکرانے لگتے ہیں. لیکن پھر بھی ایشوریہ سیوا سمجھ کر کے اور اپنی آتما کو آگے بڑھانے کی درشٹی سے جتنا سنگھن کو آگے بڑھائیں گے اتنا اپنا فائدہ ہوگا اور وائبریشن زیادہ ہوگا. کیونکہ ابراہیم بدھ کرائسٹ گرو نانک نے گرجا گھر مندر مسجد گرجا گھر یہ کیوں بنائی؟ سنگھن میں زیادہ طاقت ہوتی ہے نا. ویسے بھی کہتے ہیں سنگھ شکتی کلو یوگ. کیا کل یوگ میں سب سے بڑی شکتی ہوتی ہے سنگھن میں. تو سنگھت ہو کر کے اگر رہیں گے تو جیسے دس دھاگے ملا دو تو رستہ بن جاتا ہے, مایا توڑ نہیں سکے گی. اور ایک ایک دھاگا الگ الگ لے کے بیٹھو گے تو بدھیوگ کا دھاگا تو مایا اکیلے جاگے وہ توڑتی رہے گی, ایک ایک کر کے ٹوٹ جائیں گے. پھر اکیلے کی طاقت کہاں تک کام کرے گی؟ کیونکہ ہمت کی برگلا بھی کر دی نا. ٹیسٹ باپ آ کر کے جو سیمت دیتے ہیں اس سیمت کو فالو کرنا چاہیے نا. اہنکار میں آ کر کے فالو نہیں کرتے, اپنے گھر میں سنگھن چلائیں گے ایسے. اچھا اور کوئی بات اور اکولی میں گئی بس یہاں کول ہو وہاں تو جانے نہیں دیجیے کول مانا کوئلہ ہے تو سنگا رنگ لگ جائے گا کوئلے کا مندر بنے ہوئے ہیں وہ برہما کماری آسرم بنے بنے کیا بنے گیتا مندر گیتا مندر میں آ کر کے گیتا جو بھگوان نے پڑھائی پڑھائی ہوگی نا پانچ ہی پانڈو پڑھتے ہیں پوری پڑھائی ہے یہ کچھ بھی نہیں جانا ہے پانچ ہی آ رہے ہیں زیادہ نہیں آ رہے آواز نکلی بھی نہیں بہت آئی آدمی جلد میں سب کچھ دھونے مل رہا ہے ان میں کوئی ایسا ہے جس کو دھونے ملتا ہو زیادہ ہے کم ہے آپ کو زیادہ دکھ مل رہا ہے تو اس کا مطلب آپ زیادہ سکھ ملنے والا ہے حساب کتاب کا آدمی رکھا
بابا نے تو بولا گھومنا پھرنا بھوتوں کا کام ہے دل ہو رہی ہے دل ہو رہی سبھی تو پوچھ رہے ہیں دل نہیں ہوتی تو بابا تو پوچھتے بھی نہیں ہو رہی نا دل ہے اور پھر وہاں مایا کی جو نگری ہے مایا کی دنیا ہے امریکہ اور کیا آ میرے کا بابا نے تو ایسی پریبھاشا دی ہے میرے ہو کیا یا مایا کی نگری کے تو مایا کی نگری کا سنکرم لینا ہے کیا لینا ہے تو جاؤ
نہیں چلتا جاب کا ٹائم آئے گا تو چل پڑے بابا نے تو بردان دیا ہوا ہے جو ایڈوانس گیان میں چلنے والے ہیں ان کا پورا پریوار گیان میں چلے گا کیا ہاں جو بھی ہے آتی ہے وہ سارے گیان میں چلیں گے نشچنت ہو
جاؤ چلے گا
ہاں سب چلے گا